नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगत चंदौली
और मैं प्रेमा नेगी हाजिर है एक बार फिर आपके अपने कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है
नई दिशा। दोस्तों, हर माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा अजीज होते हैं उनके बच्चे।
वो अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं,
यहाँ तक कि अगर बच्चे को हल्का जुकाम हो तो माँ बाप की आंखों की नींद उड़ जाती है।
और यही नहीं, बदन की हल्की सी तपिश से ही माँ बाप का चैन गुम हो जाता है।
हर हाल में ख्याल रखना चाहते हैं माँ बाप अपने बच्चों का।
लेकिन दोस्तों, बच्चों में HIV के बारे में सभी के पास जानकारी नहीं होती, तो ऐसी परिस्थिति में माता पिता अपने बच्चे को सही जाँच और देखभाल नहीं दिला पाते।
तो दोस्तों, हमने सोचा क्यों ना आज हम आपको बच्चों में HIV पॉजिटिव परिस्थितियों के बारे में जानकारी दें।
तो आइए दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको अपने पहले सेगमेंट जानो अनजाने की तरफ। दोस्तों, अगर HIV पॉजिटिव बच्चों की बात की जाए तो सबसे पहले याद रखें कि बच्चों में HIV होने की संभावना सबसे ज्यादा उनकी माँ से होती है। यदि बच्चे की माँ पॉजिटिव है और प्रेगनेंसी के दौरान या फिर प्रसव के समय कोई ART उपचार नहीं हुआ तो बच्चे को HIV होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं।
और दोस्तों, बच्चों को संक्रमित रक्त या फिर संक्रमित सुइयों से भी HIV हो सकता है, तो हमें अपने बच्चों को HIV से बचाए रखने के लिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है।
और इस सतर्कता में शामिल है अपने बच्चे के विकास के प्रति चौकन्ना होना। अगर बच्चे का विकास अपनी उम्र के हिसाब से काफी धीरे हो रहा है
या फिर उसका वजन सामान्य से काफी कम है, यानी वो अपनी उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है,
और इसके साथ साथ यदि उसका मानसिक विकास भी अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से धीरे होता है
या फिर उसे चलने में समस्या होती है, तो शायद आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए और HIV के बारे में भी जानना चाहिए। वैसे दोस्तों, ये सब बातें किसी और कारण से भी हो सकती हैं, लेकिन बच्चों में विकास की धीमी गति का एक कारण HIV भी होता है।
इसके साथ साथ HIV पॉजिटिव बच्चा आम बीमारियों से भी ग्रसित रहता है, जैसे बार बार खांसी जुकाम होना, बुखार का होना या फिर कान में इन्फेक्शन, इसके अलावा टॉन्सिल का फूल जाना वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास बातें जो जागरूक माता पिता होने के नाते आपको जाननी चाहिए।
इसके अलावा अगर आप हमसे इस संबंध में या HIV से ताल्लुक रखती हुई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमसे बेझिझक खतों या फिर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं।
खत लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम नई दिशा, 177 बेसमेंट अशोका इंक्लेव 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद 121003, हरियाणा।
और हमारा ईमेल आईडी है नई दिशा NAYEDISHAA@gmail.com।
जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई।
और दोस्तों, अब समय हो चुका है इनामों का,
यानी कि पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल का सही जवाब देने वाले विजेता का नाम बताने का। तो किसने जीती है हमारी आज की भेजा फ्राई कैप, बताते हैं हमारे सेगमेंट भेजा फ्राई में। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते का हमारा सवाल था, ऐसा कौन सा उपाय है जो गर्भ, HIV और यौन रोगों के संक्रमण सभी को रोकने में प्रभावशाली है।
और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि कॉन्डोम।
और दोस्तों, एपिसोड 40 का सही जवाब देकर हमारे आज की भेजा फ्राई कैप के विजेता बने हैं श्री प्रशांत दत्ता आसाम से। आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक हो।
और दोस्तों, अब हमारा आज का सवाल,
और आज का सवाल है, एक पुरुष कॉन्डोम कितनी बार इस्तेमाल किया जा सकता है। सवाल एक बार फिर से सुनिए, एक पुरुष कॉन्डोम कितनी बार इस्तेमाल किया जा सकता है। और आपके ऑप्शन हैं ए, एक से अधिक बार अगर उसे ठीक से धोकर इस्तेमाल करें तो, बी, सिर्फ एक बार, सी, अगर एक ही व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है तो एक से अधिक बार, और डी, बिना धोए एक से ज्यादा बार। अपने ऑप्शंस एक बार फिर से सुनिए। ए, एक से अधिक बार अगर उसे ठीक से धोकर इस्तेमाल करें तो, बी, सिर्फ एक बार, सी, अगर एक ही व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है तो एक से अधिक बार, और डी, बिना धोए एक से ज्यादा बार।
तो दोस्तों, अगर आपको जवाब मालूम है तो सोच क्या रहे हैं, फटाफट अपना मोबाइल फोन उठाइए, टाइप कीजिए ND44 भेजा फ्राई स्पेस और अपना जवाब ए, बी, सी या डी, और लिखकर हमें भेज दीजिए 9717678223 पर।
और अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट आमने सामने का। तो दोस्तों, आमने सामने में हमारी आज की मेहमान है डॉक्टर मोनिका गुप्ता, जो हमारे साथ चर्चा करने वाली है HIV पॉजिटिव बच्चों के बारे में। बच्चों में HIV के क्या कारण हैं और बच्चों को HIV से कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, आइए इस बारे में हम बात करते हैं डॉक्टर मोनिका गुप्ता जी से।
डॉक्टर मोनिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए।
मेरा नाम डॉक्टर मोनिका गुप्ता है और मैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ।
डॉक्टर गुप्ता, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि गर्भवती HIV संक्रमित माँ से होने वाला बच्चा HIV पॉजिटिव है या HIV नेगेटिव है, इसका पता कैसे लगाया जाता है?
देखिए, आमतौर पर नवजात शिशु HIV संक्रमित है या नहीं, यह जन्म के फौरन बाद कहना संभव नहीं होता है। इसलिए हमें 18 महीने के बाद ही इस बात का असली रूप में पता चल सकता है, क्योंकि 18 महीने तक माँ के द्वारा संचारित एंटीबॉडीज बच्चे में पाई जाती हैं, और 18 महीने बाद ही रक्त की जांच अगर करी जाए तो सही मानों में बच्चे में क्या HIV इन्फेक्टेड एंटीबॉडीज हैं उसका पता लगाया जा सकता है। पर फिर भी माँ का संक्रमण की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है या माँ की प्रतिरोध क्षमता काफ़ी कम थी, जिसमें हम संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि बच्चे में HIV संक्रमण हुआ होगा, ऐसे में 18 महीने से पहले भी पता लगाया जा सकता है। पर उसके लिए रक्त की जांचें काफ़ी महंगी होती हैं और वो जांचें हर जगह पर उपलब्ध भी नहीं होती हैं।
जी डॉक्टर साहब।
डॉक्टर, ये बताइए कि न्यूबॉर्न बच्चे में HIV कैसे मैनेज किया जाता है?
यदि माँ HIV संक्रमित है तो HIV संक्रमित माँ से बच्चे का जन्म अस्पताल में ही होना चाहिए। दूसरी बात, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको फौरन नहलाया जाता है ताकि माँ से संक्रमित द्रव्यों से बच्चा ज्यादा देर तक जुड़ा ना रहे। इसके बाद एहतियात के तौर पर बच्चे को भी ART दी जाती है, जो कि बड़ों के मुकाबले कम मात्रा में होती है और बच्चे के वजन के हिसाब से दी जाती है और वह शरबत के फॉर्म में होती है। फिर भी 1.5 साल तक बच्चे को देखरेख में रखना चाहिए ताकि 1.5 साल बाद खून की जांच के द्वारा ही यह पता लगाया जा सकता है कि बच्चे में HIV संक्रमण हुआ है या नहीं।
जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये सब जानते हैं कि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए क्योंकि पढ़ाई जो है वो एक अनिवार्य हिस्सा है जिंदगी का, तो क्या इन HIV पॉजिटिव बच्चों को भी स्कूल जाना चाहिए? और अगर जाना चाहिए तो फिर जो दूसरे माता पिता होते हैं जिनको ये डर लगा रहता है कि उनके बच्चे जो कि HIV से ग्रसित नहीं है कहीं वो ना ग्रसित हो जाएं उनके संपर्क में आकर के, तो उन माता पिताओं का डर किस तरह से खत्म किया जा सकता है?
HIV पॉजिटिव बच्चों को जरूर स्कूल जाना चाहिए। जैसा कि हम सबको पता है कि साथ बैठने, खेलने, उठने, छूने से HIV का संक्रमण नहीं होता है, तो यह धारणा बिल्कुल गलत है कि HIV पॉजिटिव बच्चों को स्कूल नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर मैं यह भी कहना चाहूँगी कि दूसरे माता पिताओं को इस बात से चिंता नहीं रहनी चाहिए कि HIV संक्रमित बच्चे के साथ उनके बच्चे खेलेंगे, क्योंकि आमतौर पर यह धारणा होती है कि भाई बच्चे साथ खेलेंगे तो चोटें भी लगेंगी, खून भी निकलेगा, तो उससे HIV फैल जाएगा। वहाँ ऐसे में मैं उनको यह बताना चाहूँगी कि HIV का फैलना, एक दूसरे में HIV का संक्रमण होना बहुत ही कम संभावित है, क्योंकि ऐसा होने के लिए या तो दोनों बच्चों को इकट्ठे चोट लगे और इकट्ठे चोट लगने के बाद उनका जो रक्त है वो आपस में तभी के तभी मिले और उसमें रक्त में एचआईवी कणों की मात्रा बहुत ज्यादा हो, तो इसलिए ये सब गलत धारणाएं हैं कि साथ खेलने से और चोट लग जाने से एचआईवी का संक्रमण हो जाएगा। इसलिए उनको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि एक एचआईवी पॉजिटिव अगर बच्चा है तो वह किसी भी नॉर्मल दूसरे बच्चे की तरह खेल सकता है, खा सकता है, कूद सकता है, स्कूल जा सकता है, पढ़ सकता है और आगे चलकर अपने अच्छे गोल्स अचीव कर सकता है।
जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को ये तमाम जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
देखते जाओ तुम ऐसा भी एक दिन तो जरूर आएगा, हमसे इस दुनिया में एक दिन हर कोई जब हाथ मिलाएगा।
अब समय हो गया है आपकी बात करने का, यानी आपके सवालों का जवाब देने का। तो दोस्तों, आपकी बात में आज हम जो चिट्ठी पढ़ने वाले हैं, इसे हमें भेजा है बबीता धोबाल ने गढ़वाल से, और वो ये पूछ रही हैं कि एचआईवी और एड्स में कितना फर्क होता है। वैसे तो इससे बचने के उपाय होते हैं, लेकिन इसे काफी हद तक मिटाया या खत्म किया जा सके, क्या ऐसा कोई उपाय है? बबीता जी, जैसा कि हम आपको और अपने सभी श्रोताओं को ये बराबर बताते चले आ रहे हैं कि एचआईवी एक वायरस है और एड्स एक सिंड्रोम है, यानी कि जब कोई व्यक्ति एचआईवी से संक्रमित होता है तो उसे एड्स की स्थिति तक पहुंचने में कम से कम 5 से 7 साल तक का समय लग सकता है।
और हाँ बबीता जी, जैसा कि आपने कहा कि इससे बचने के उपाय हैं, सावधानी बरतना, सुरक्षित यौन संबंध बनाना यानी बिना कॉन्डोम के कभी भी यौन संबंध नहीं बनाना, सुरक्षित सुइयों और जांचे हुए खून का ही इस्तेमाल करना, और माँ से बच्चे तक एचआईवी के फैलने से बचने के लिए डॉक्टरी सलाह लेना। बबीता जी, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इन सब में सबसे बड़ा उपाय तो एचआईवी के बारे में जानकारी रखना ही है, लेकिन इससे पूरी तरह मिटाने के अभी तक कोई उपाय नहीं है, लेकिन इसे एआरटी दवाइयों के साथ मैनेज किया जा सकता है, जिससे कि एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति एक पूरी और कार्यरत जिंदगी जी सकता है।
माहौल बना हर दर्द की है बस एक दवा, जी खोल के जी, जी जान से जी, कुछ कम ही सही परेशान से जी।
तो दोस्तों, अगर आप हमसे एचआईवी के संबंध में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप अपना सवाल हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं।
और इसके अलावा अगर कार्यक्रम के संबंध में आप कोई राय अथवा सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो वो भी आप हमें चिट्ठी और ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। चिट्ठी भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम नई दिशा, 177 बेसमेंट अशोका इंक्लेव 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद 121003, हरियाणा।
हमारा ईमेल आईडी है नई दिशा NAYEDISHAA@gmail.com।
और दोस्तों, अब समय हो चुका है आपके मनोरंजन का, यानी कि हमारे रेडियो धारावाहिक जीवन की राह का।
पिछले हफ्ते के एपिसोड में आपने सुना, विनोद रविता से मुलाकात करता है और रविता को अपने बारे में सब कुछ बता देता है। विनोद की सच्चाई सुनकर रविता के दिल में विनोद के लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है और वो उसके प्यार को स्वीकार कर लेती है। सूरज जयपाल की दवाइयां पैक करके गांव के लिए भेज देता है।
उधर राजन सर मोहित से वादा करते हैं कि अगर वो अच्छे से मेहनत करेगा तो वो उसकी स्कॉलरशिप वापस दिलवाने में पूरी मदद करेंगे। आइए अब सुनते हैं आगे की कहानी।
अरे 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 बच्चों,
अरे भाई श्याम सुंदर, आज किधर चले जा रहे हो?
अरे प्रधान जी नमस्ते।
नमस्कार।
अब प्रधान जी, डाकिया भला चिट्ठी पार्सल पहुंचाने के अलावा और किधर जाएगा?
ठीक कह रहे हो,
जयपाल का एक पैकेट आया है मुंबई से।
अच्छा,
बस उसी को पहुंचाने जा रहा हूँ।
जयपाल का? अब इसको किसी ने क्या भेजा होगा?
अब वैसे तो गांव की ओर कोई डाक है नहीं प्रधान जी, बस एक जयपाल का पैकेट पहुंचाने के लिए ही इतना दूर आना पड़ रहा है। और उधर शाम ढलने से पहले शहर भी पहुंचना है, घर का कुछ सामान खरीदना था। लगता नहीं कि आज की तारीख में शहर जा पाऊंगा।
अच्छा, अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, तुम जयपाल का पैकेट मुझे दे दो, मेरा कोई आदमी उसके घर पहुंचा देगा।
अच्छा,
देखो तुम्हारे दोनों ही काम हो जाएंगे, जयपाल तक उसका पैकेट भी पहुंच जाएगा और तुम भी शाम होने से पहले शहर जाकर सामान खरीद सकोगे।
कह तो आप सही रहे हैं प्रधान जी, पर आप ये पैकेट ध्यान करके पहुंचवा दीजिएगा।
उसकी तुम चिंता ही मत करो।
ठीक है, ये लीजिए।
ठीक है,
मैं चलता हूँ। राम राम।
राम राम भाई, राम राम। आखिर इस पैकेट में क्या हो सकता है, खोल कर देखूं? नहीं नहीं, यहाँ सही नहीं है, घर चल कर देखता हूँ।
पता नहीं ये रबिता भी कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई।
अरे सुमन, किसी का इंतजार कर रही हो?
हाँ मोहित, वो रबिता का पता नहीं कहाँ रह गई है।
अरे आ जाएगी। अच्छा अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है?
पहले से काफी बेहतर है।
काफी मुश्किल हो रही होगी ना, अभी स्कूल की पढ़ाई और घर का काम सब एक साथ।
थोड़ी सी मुश्किल हुई थी लेकिन अब कोई परेशानी नहीं होती। तुम्हें पता है घर का काम करते हुए भी मैं पढ़ाई के लिए काफी समय निकाल लेती हूँ।
चलो अच्छा है।
और तुम सुनाओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है?
अच्छी चल रही है।
और वो स्कॉलरशिप वापस मिल जाएगी ना?
हाँ सुमन, कोशिश तो है। वैसे राजन सर ने भी वादा किया है मुझसे कि अगर मैंने अच्छे से मेहनत की और अच्छे नंबर प्राप्त किए तो मेरी स्कॉलरशिप मुझे जरूर मिल जाएगी।
बेस्ट ऑफ लक।
किस लिए?
अरे तुम्हारी स्कॉलरशिप के लिए और किस लिए।
हाँ थैंक यू थैंक यू।
सुमन।
अच्छा मैं चलता हूँ।
ठीक है।
सुमन।
सुमन क्या रबिता, पता है कितनी देर से मैं इंतजार कर रही हूँ, देखो सारे बच्चे चले गए।
अरे सुमन मैं क्या करती, वो गीता है ना, उसे मेरी कॉपी में से कुछ प्रश्नों के उत्तर उतारने थे, बस इसी चक्कर में देर हो गई।
ठीक है जल्दी चल, अब घर पर माँ भी इंतजार कर रही होगी।
हाँ हाँ चल।
राजन जी।
जी डॉक्टर।
क्या आपने विनोद को बुलाया है?
जी डॉक्टर साहब, बस आता ही होगा।
अच्छा अच्छा।
नमस्कार राजन सर। नमस्कार डॉक्टर।
नमस्कार, आओ भाई, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था।
तो क्या यही विनोद है?
जी डॉक्टर साहब। विनोद, डॉक्टर साहब तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं।
मुझसे?
हाँ विनोद।
कोई खास बात है क्या डॉक्टर?
हाँ तुम जरा मेरे साथ आओ।
जी डॉक्टर।
ठीक है डॉक्टर साहब, आप विनोद से बात कीजिए, मैं बाकी का काम देखता हूँ।
हाँ हाँ राजन जी बिल्कुल, आप अपना काम कीजिए। आओ विनोद आओ।
ये लो भैया तुम्हारा राशन।
सुनिए।
अरे लक्ष्मी तू यहाँ दुकान पर क्या कर रही है?
आप अपनी दवाइयाँ घर पर ही भूल आए थे।
हाँ मैं भूल गया था, अच्छा हुआ तू ले आई।
हाँ ये लीजिए दवाई खा लीजिए।
हाँ ला।
पानी?
हाँ ला।
क्या हुआ?
कुछ नहीं कुछ नहीं।
अच्छा सुनिए, सूरज भैजी ने अभी तक आपकी दवाई नहीं भेजी, आप कहें तो मैं एक बार धनवंती दीदी से बात करके देखूं।
अरे
उनके पास मोबाइल फोन भी है, क्या पता उनकी सूरज भैजी से कोई बात हुई हो।
लक्ष्मी देख, सूरज एक जिम्मेदार इंसान है, उसे पता है उन दवाइयों की मेरे लिए क्या अहमियत है।
हाँ लेकिन।
अरे देखो तो हो सकता है उसने दवाइयाँ भेज दी हूँ, वो रास्ते में ही हूँ। अब देख ऐसे किसी के घर पर जाकर बार बार परेशान करना अच्छी बात नहीं है ना।
हाँ वो तो है, लेकिन बस एक दो दिन की ही खुराक बची है आपकी, अगर खत्म होने से पहले दवाइयाँ नहीं आई तो।
कुछ नहीं होगा। तू घबरा मत, अरे दवाइयाँ आज नहीं तो कल आने वाली होंगी।
अच्छा जी ठीक है। अच्छा ये लीजिए, मैं आपके लिए खाना भी ले आई हूँ, अभी लगा दूँ?
नहीं नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद मैं खा लूंगा, तू जा।
अच्छा अच्छा ठीक है, मैं घर जाती हूँ अब, राधा भी स्कूल से आने वाली होगी।
हाँ ठीक है।
तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारा रेडियो धारावाहिक जीवन की राह।
दोस्तों, हमें वाकई बेहद खुशी है कि आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, इसके साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ आप हमारी उस कोशिश में शामिल भी हो रहे हैं जिसका मकसद HIV की वजह से होने वाले भेदभाव को रोकना है।
दोस्तों, हमारे समाज के ही कुछ लोग ये भेदभाव न सिर्फ बड़ों में बल्कि बच्चों में भी करते हैं। उनसे उनके अधिकार छीनने की कोशिश करते हैं। उन्हें सामान्य बच्चों के साथ खेलने, पढ़ने लिखने से मना करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है।
दोस्तों, आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर आपके सामने किसी मासूम बच्चे के साथ भेदभाव हो रहा है सिर्फ इसलिए कि वो HIV पॉजिटिव है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे?
जब हमारे सामूहिक संवाददाताओं ने यही प्रश्न आप ही में से कुछ श्रोताओं के सामने रखा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए आपको सुनवाते हैं।
इसके लिए सबसे पहले जो HIV एक संक्रामक रोग है, और इसके लिए जो बच्चों में अगर इस रोग का अगर कोई प्रकोप है तो सबसे पहले जो बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है उसके माँ बापों को इसके बारे में जानकारी बताएं, तथा जहाँ पे जो है बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ पे गुरुजी और जो अध्यापक होते हैं उनकी ये सहायता लें, ताकि वो किसी बच्चे के साथ जो है HIV बच्चे के साथ जो है भेदभाव न करें। और जो साथी जो और बच्चे होते हैं उनको इसके बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए कि यह HIV जो है किस कारणों से फैलता है और किन कारणों का इसके लिए समाधान किया जाता है।
इसके लिए उस बच्चे से भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसको वो सभी अधिकार मिलने चाहिए जिसका वो हकदार है। अगर कहीं स्कूल और घर परिवार में उसे भेदभाव किया जाता हो तो ये गलत बात है, उसे भेदभाव नहीं करना चाहिए।
HIV पॉजिटिव बच्चों को भी वही अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि उनको भी समाज में रहने का जीने का अधिकार है। जैसे हमारी आम बीमारियां होती हैं उसमें हम उतना भेदभाव नहीं करते बच्चों के साथ, तो इस बीमारी में भी, क्योंकि अभी तक बीमारी है, इसमें भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसलिए विद्यालय के प्रिंसिपलों द्वारा या किसी NGO के द्वारा या विज्ञापनों के द्वारा जो है इसका शिक्षा का प्रसार करना बहुत जरूरी है, ताकि भेदभाव मिट जाए।
दोस्तों, आपके विचारों से हमें संतुष्टि मिलती है, लगता है कि हम अपनी कोशिश में कामयाब हो रहे हैं।
जी हाँ दोस्तों, प्रेमा ने बिल्कुल सही कहा। सचमुच दोस्तों, अगर आप यूं ही हमारा साथ देते रहे और हमारी इस कोशिश में हमारे साथ जुड़े रहे तो हम जरूर सफल होंगे।
और दोस्तों, जैसा कि अब घड़ी कर रही है इशारा, यानी कि समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे
अपने सामूहिक संवाददाताओं को जिन्होंने हमारे श्रोताओं के विचारों को जानने का प्रयास किया।
साथ ही हम धन्यवाद करते हैं सामुदायिक रेडियो हैवलवानी और मंदाकिनी की आवाज को, जो इस कार्यक्रम को पहाड़ों में बसे हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
और इसके अलावा हम आभारी हैं अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन का भी, जिनके वित्तीय सहयोग से आइडियो सिंक मीडिया कम्बाइन द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। और दोस्तों, अब मुझे और प्रेमा को दीजिए इजाजत, हमारी और आपकी अगले हफ्ते इस समय फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।